بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے آدرنیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کیجیے۔ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ پوتر قرآن کے سورہ حجرات کی چھٹی اور ساتویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
اللہ کے نام سے جو اتین کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، یدی کوئی ادھرمی کوئی خبر لے کر آئے تو چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گٹ کو انجانے میں کوئی ہانی پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پشچتاپ ہو۔ اور جان لو کہ تمہارے بیچ ایشور کے پیغمبر موجود ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ یدی پیغمبر ان میں تمہارا کہا مان لیا کریں تو उल्टे तुम ही कठिनाई में पड़ जाओ, परंतु ईश्वर ने तुम्हें ईमान का प्रेम दिया है और उसे तुम्हारे हृदयों में सजा दिया है, और कुफ्र, उल्लंघन और अवज्ञा को तुम्हारे लिए अप्रिय बना दिया है, और ऐसे ही लोग ईश्वर के अनुग्रह और उपकार से सही मार्ग पर हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, सभा में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, मार्च की 17, शाबान की 24 और इस्फंद माह की 26 तारीख। कार्यक्रमों में आप विगत की भांति पहले विश्व समाचार सुनेंगे, फिर हम विश्व समाचारों के बाद आपको राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुनवाएंगे। राजनीतिक चर्चा के बाद आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम पेश किया जाएगा, पत्र संसार, और हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा विज्ञान की डगर। तो दोस्तों, ये थी हमारे कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, parstoday.ir/hi। हमारा ईमेल है hindi@ws.irib.ir। और अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। अमीर अब्दुल्लाहियान ने जोसेफ बोरेल से विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की। कनानी कहते हैं कि ईरान के बारे में पश्चिम के दावे निराधार हैं। ईरान, रूस और चीन का संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी है। अधिकतर ज़ायोनी गृह युद्ध को लेकर बहुत परेशान हैं। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख ने टेलीफोन पर बातचीत की। इस वार्ता में ईरान के विदेश मंत्री ने इस देश पर प्रतिबंध हटाने, यूक्रेन की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी तथा ईरान के संबंधों सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। अमीर अब्दुल्लाहियान ने यूक्रेन के विषय पर कहा कि ईरान ने यूक्रेन में मौजूद स्थिति, उसके कारणों और युद्ध से संबंधित ईरान के विरोध पर पहले भी बात की है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि पश्चिमी देशों को ईरान के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के बजाय यूरोप को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो राजनीतिक और सैन्य बैठकों तथा दोनों देशों के बीच आधिकारिक बैठकों में अपने आरोपों के सबूत पेश करे। आरोप लगाने के बजाय अगर वो बातचीत का रास्ता चुनता है तो उन्हें पता चल जाएगा कि ईरान शांति चाहता है, युद्ध नहीं। ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा परिषद के सचिव और सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने संयुक्त अरब इमारात की अपनी यात्रा के दौरान इस देश के उच्चाधिकारियों से विचार विमर्श किया। अली शमखानी ने अबूधाबी पहुंचने के बाद यूएई के प्रमुख से मुलाकात में दोनों देशों के प्राचीन ऐतिहासिक संबंधों और दोनों देशों के बीच पाई जाने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक समानताओं की ओर इशारा किया। उन्होंने समस्त क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों में विस्तार पर भी बल दिया। उन्होंने क्षेत्र में संकट के कारणों का उल्लेख किया जो क्षेत्र के बाहर के देशों के इशारों पर अंजाम पा रहे हैं। श्री शमखानी ने कहा कि सामूहिक सुरक्षा की प्राप्ति स्थानीय क्षमताओं पर भरोसा करते हुए हासिल की जा सकती है, जो बहुत से वर्तमान संकटों को खत्म कर सकती है। ناصر کنعانی کہتے ہیں کہ ایران کے بارے میں پشچم کے دعوے نرادھار ہیں۔ ایران کے ودیش منتالے کے پروکتا کے انوسار پشچم نے اسلامی گڑتنتر ایران کے ورودھ جو دوہرے ماپ دنڈ اپنا رکھے ہیں وہ سب اوشوسنی ہیں۔ ناصر کنعانی نے زائونی شاسن کے پردھان منتری کے ساتھ جرمنی کے چانسلر کی ملاقات میں دیے گئے ایران ورودھی بیان کے سندرب میں کہا، وشو کے سارے ہی سوتنتر دیش اور عام جنمت پشچم کے دوہرے ماپدنڈوں سے اب اوب چکے ہیں۔ ودیش منتالے کے پروکتا کنعانی نے کہا کہ جرمنی اور زائونی شاسن کی اور سے اس بیان کو بار بار دہرایا جانا کہ ایران پرمانو ہتھیاروں تک پہنچ بنانے کے پریاس میں ہے دوسروں اور جو دوسروں کے لیے گمبھیر خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی کے ادھیکاری ایران کے اس شانتی پورن پرمانو کارکرم کو خطرہ بتا رہے ہیں جو انتراشٹری پرمانو ارجا ایجنسی کے کڑے نریکشن میں چل رہا ہے۔ ودیش منترالے کے پروکتا کا کہنا ہے کہ یورپی سنسد ایران راشٹر کے ورودھ نفرت پھیلانے والے کیندر میں بدل چکی ہے۔ ایران کے کچھ اسکولوں میں زہر خورانی کے بارے میں یورپی سنسد میں پرستاؤ پیش کیے جانے کے بارے میں ایران کے ودیش منترالے کے پروکتا کنعانی نے کہا کہ اس سمے یورپی سنگھ ایرانی راشٹر کے ورودھ گھرنا پھیلانے کے کیندر میں پریورتت ہو چکا ہے۔ ایران ویرودھی امریکی نیتیوں کا انوسرن کرتے ہوئے یورپی سنگھ نے ایران کے کچھ اسکولوں میں زہر خورانی کے مدے پر ایک پرستاؤ پارت کیا۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا نے اس مدے کو معصوم بچوں کے ہت میں بہت بڑا اپرادھ بتایا تھا۔ انہوں نے پرشاسنک اور گپتچر وبھاگ کے ادھیکاریوں سے کہا تھا کہ وہ اس معاملے کی جانچ بہت گمبھیرتا سے کریں۔ ناصر کنعانی نے کہا کہ وہ سندگھ معاملہ جس کی جانچ اچ استر پر چل رہی ہے اس کے بارے میں یورپی سنگھ میں پرستاؤ پارت کرنا اور نرادھار آروپوں کو دہرانا واسطو میں آشچرے چکت کرنے والی بات ہے۔ تہران کے امام جمعہ کہتے ہیں کہ ایران اس بار بھی دشمنوں کے سمی کرن شما کیجیے گا۔ تہران کے امام جمعہ نے کہا ہے کہ ایران کے بارے میں دشمنوں کے سمیکرن اس بار بھی گڑبڑا گئے۔ حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد حاج علی اکبری نے کہا کہ ایران کے ورودھ 100 دنوں سے ادھک دنوں تک کارروائی کرنے کے ساتھ ہی ہر اور سے دباؤ بناتے ہوئے شترو اس کے پرینام کو وارتا کی میز پر دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شترو نے کئی شڈیانتر رچے تھے، انت میں چھاتروں کو وشاکت کرنے اور 1401 ہجری شمسی ورش کے انتیم بدھوار کو کال دے کر شترو اپنے کارکرم کو آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک شیطانی کوٹ نیتی بھی چل رہی تھی کہ مانواधिकारों کے ہنن کا آروپ لگا کر ایران کو الگ تھلگ کر دیا جائے۔ تہران کے امام جمعہ کا کہنا تھا کہ حالانکہ دشمنوں کی یوجنا بندی بہت ٹھیک تھی کنتو ان کے سمیکرن ایران کے بارے میں گڑبڑا گئے۔ اسلامی گڑتنت ایران، چین اور روس کی نو سیناؤں کی بھاگیداری سے نو سینا سرکشا بیلٹ نامک سین ابھیاس ہند مہاساگر میں کل رات شروع ہوا۔ اس میں قزاقستان اور پاکستان پریویکشک کے روپ میں بھاگ لے رہے ہیں۔ نیول سیکیورٹی بیلٹ 2023 سین ابھیاس کے پروکتا نے کہا ہے کہ ان سین ابھیاسوں میں ایرانی نو سینا کی وبھن اکائیوں کے ساتھ ساتھ اسلامک ریولیوشنری گارڈس کراپس IRGC کی نو سینا کی یونٹ بھی شامل ہے۔ ان سینیہ ابھیاسوں میں چینی اور روسی نوکائیں بھی بھاگ لے رہی ہیں۔ یہ سینیہ ابھیاس ہند مہاساگر میں کل رات شروع ہو گئے۔ سینا کے پروکتا نے بتایا کہ ایران، چین اور روس کی بھاگیداری والا یہ چوتھا سینیہ ابھیاس ہے۔ زائونی شاسن میں جاری سنکٹ کے درشٹیگت وہاں کے ادھکتر لوگ اب گرہ یدھ کو لے کر چنتت دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک سرویکشن سے پتہ چلتا ہے کہ ادھکانش اسرائیلی یہ مانتے ہیں کہ وہاں کی ورتمان استھتی کے درشٹیگت اب کیول گرہ یدھ کا وکلپ ہی ان کے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے انوسار زائونی شاسن کے چینل 11 کی اور سے کرائے گئے سرویکشن یہ بتاتے ہیں کہ وہاں کے 58% سے ادھک لوگ یہ مان رہے ہیں کہ کبھی بھی گرہ یدھ آرمبھ ہو سکتا ہے یا پھر ہنسک جھڑپوں کا کرم شروع ہو جائے گا۔ یہ سرویکشن حالیہ دنوں میں اسرائیل میں نتنیاہو ویرودھی پردرشنوں میں تیزی آنے کے بعد کرائے گئے۔ وہاں پر نتنیاہو کے منتری منڈل کو لے کر ویرودھ پردرشن چل رہے ہیں جس میں بہت بڑی سنکھیا میں لوگ وبھن نگروں میں پردرشن کر رہے ہیں۔ اسی بیچ بہت سے راجنیتک ٹیکہ کار اس بات پر سہمت دکھائی دے رہے ہیں کہ اسرائیل آج ایک بہت ہی گمبھیر راجنیتک گتیرودھ کا شکار ہو چکا ہے۔ اسرائیلی سینکوں سے جھڑپوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں میں ایک قسام بریگیڈ اور جہاد اسلامی کے کمانڈر بھی شامل ہیں۔ فلسطینی میڈیا سوتروں کے انوسار زائونی شاسن کے اویدھ ادھیکرت جنین چھیتر پر تازہ حملوں اور فلسطینی پرتیرودھ کرتا گٹوں کی اور سے سشستر کاروائیوں میں کم سے کم 4 فلسطینی شہید اور 20 انیہ گھائل ہو گئے۔ شہید ہونے والے سنگھرش کرتا شما کیجیے گا فلسطینی استھانی سوتروں کے انوسار اسرائیلی سینک جنین میں اپنی آتنکی کاروائیوں کے دوران فلسطینی سنگھرش کرتاؤں کے گھیرے میں آ گئے تھے۔ لبنان کی سرکار نے اس دیش کے سینٹرل بینک کے گورنر کے تیاگ پتر اور ان کی سمپتی کو ضبط کیے جانے کی مانگ کی ہے۔ لبنان کے سینٹرل بینک کے گورنر نے اپنے ورودھ ہر پرکار کی نیائک پرکریا کا ورودھ کیا ہے۔ ریاض سلامہ نے اپنے تتھا اپنے صلاح کاروں کے ورودھ کسی بھی قانونی کارروائی کا سامنا کرنے سے انکار کر دیا۔ لبنان کی سینٹرل بینک کے گورنر ریاض سلامہ کے صلاح کار ان کے 2 بھائی ہی ہیں۔ اب ریاض سلامہ نے اپنے پد سے تیاگ پتر تو دے دیا ہے، کنتو وہ اپنے ورودھ ہر پرکار کی قانونی کارروائی کا کھل کر ورودھ کر رہے ہیں۔ پوروی افریقہ میں آنے والے فیڈری طوفان نے کئی دیشوں میں تباہی مچا دی ہے۔ افریقی دیشوں ملاوی، موزامبیک اور میڈاگاسکر میں فیڈری طوفان کے کارن اب تک کم سے کم 300 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ اس طوفان کے کارن 88,000 سے ادھک لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس طوفان میں سب سے ادھک نقصان ملاوی کو ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ وشو سماچار سماپت ہوئے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
دوستو، میں ہوں رویش زیدی اور آپ کا سواگت ہے راجنیتک چرچا کے دینک کارکرم میں۔ آج کے کارکرم میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے ایران، روس اور چین کی نوسینا کے بیچ جاری سنیکت سین ابھیاس کے بارے میں،
2023 سمندری سرکشا،
اور پھر بات کریں گے ایران اور سعودی عرب کے بیچ ہوئے سمجھوتے کی ہر اور ہو رہی چرچا کے بارے میں،
یمن کی استھتی پر سمیکشا،
اور انت میں چلیں گے بھارت، جہاں کشمیر میں میر وائز عمر فاروق کی رہائی کی مانگ نے زور پکڑ لیا ہے۔
دارمی گٹھوں کے گڑھ بندھن، متحدہ مجلس۔
تو دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران، روس اور چینی نوسینا کے بیچ جاری 2023 سمندری سرکشا بیلٹ سین ابھیاس کی۔ اس سین ابھیاس نے شیتر میں اشانتی پھیلانے والے دیشوں کی چنتا بڑھا دی ہے۔ اس سمبندھ میں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی قائم رضوی۔
2023 سمندری سرکشا بیلٹ سمگر سین ابھیاس گروار کی رات اتری ہند مہاساگر کے شیتر میں اسلامی گڑتنت ایران کی نوسینا، آئی آر جی سی کی نیوی یونٹ، روسی نوسینا اور چینی نوسینا کی اپستھتی کے ساتھ شروع ہو گیا۔ شیتری سرکشا کی استھاپنا کے سلوگن کے ساتھ آرمبھ ہوا یہ سینی ابھیاس ایران، چین اور روس کی بھاگیداری والا 4th سینی ابھیاس ہے۔ اس سینی ابھیاس کے آیوجن کا ادیش شیتر میں سرکشا اور اس کی نیو کو مضبوط کرنا ہے، ساتھ ہی 3 دیشوں کے بیچ بہو پکشی سہیوگ کا وستار کرنا بھی ہے۔ اس ابھیاس میں بھاگ لینے والے دیشوں کی نو سیناؤں کے بیچ ویوہارک سہیوگ کو گہرا کرنے میں مدد ملے گی اور شیتری شانتی تتھا استھرتا میں سکاراتمک ارجا کی بھی پراپتی ہوگی۔ وہیں اس سینی ابھیاس پر امریکہ اور اس کے پشچمی سہیوگی دیش نظر جمائے ہوئے ہیں، جبکہ امریکی راشٹری سرکشا پریشد کے پروکتا کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس سنیکت پرشکشن ابھیاس سے چنتت نہیں ہے۔ کربی نے کہا کہ امریکہ اور انیہ دیش ہر سمے پرشکشن ابھیاس کرتے رہتے ہیں اور یہ پہلی بار نہیں ہوگا کہ جب روس، چین اور ایران ایک ساتھ سین ابھیاس کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس سین ابھیاس پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کربی کے انوسار ہم یہ سنشچت کرنے کے لیے اس کی نگرانی کر رہے ہیں کہ اس अभ्यास से हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों या क्षेत्र में हमारे सहयोगियों और भागीदारों को कोई खतरा न होने पाए। इसी बीच 2023 समुद्री सुरक्षा बेल्ट सैन्य अभ्यास के प्रवक्ता ने यह कहा है कि उत्तरी हिंद महासागर दुनिया के 5 रणनीतिक जल डमरू मध्यों में से 3 रणनीतिक जल डमरू मध्यों के बीच है, जो वास्तव में दुनिया के ऊर्जा स्रोतों को घेरे हुए है। वहीं इस संवेदनशील क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और तेल जहाजों के आवागमन के कारण समुद्री व्यापार सुरक्षा स्थापित करने की आवश्यकता 2 गुनी हो गई है। इस बीच तीनों देशों अर्थात ईरान, चीन और रूस के मध्य बढ़ता सहयोग भी अमेरिका के लिए एक संदेश है, क्योंकि उसके द्वारा क्षेत्र में किए जाने वाले निरंतर हस्तक्षेप के कारण इन देशों को जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है। फोर्ब्स पत्रिका ने इस ओर संकेत करते हुए लिखा है कि चीन जल्द ही एक नए ऑकस विरोधी सैन्य गठबंधन का प्रस्ताव पेश कर सकता है। पत्रिका के अनुसार यदि ईरान भी इसका हिस्सा बनता है तो रूसी परमाणु पनडुब्बियों की तकनीक का दायरा भारतीय और प्रशांत महासागरों और पश्चिम एशिया तथा यूरोप तक फैल सकता है। कुल मिलाकर त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास का एक लक्ष्य ईरान, रूस और चीन के बीच अनुभवों का आदान प्रदान करना बताया गया है। रक्षा जानकारों का मानना है कि विदेशी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ईरान आवश्यक क्षमता व शक्ति से संपन्न है, परंतु इसके बावजूद सामूहिक सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए क्षेत्रीय देशों के मध्य सहकारिता बहुत जरूरी है। वहीं इस समय विश्व की जो स्थिति है उसको देखते हुए तीनों देशों द्वारा किया जाने वाला सैन्य अभ्यास उन देशों के लिए खास संदेश लिए हुए है जो ईरान, रूस और चीन के सामने हर दिन एक नई चुनौती खड़ी करने की कोशिश में लगे रहते हैं। माना जा रहा है कि इस बार बीजिंग, तेहरान और मॉस्को की नौसेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, क्योंकि इन सैन्य अभ्यास की समाप्ति पर कई तरह की नई घोषणाएं भी हो सकती हैं।
और अब चर्चा करते हैं ईरान और सऊदी अरब के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के बारे में। आजकल विश्व भर में 2 महत्वपूर्ण इस्लामी देशों के बीच हुए समझौते की चर्चा हर ओर हो रही है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और देशों ने इस समझौते को महत्वपूर्ण बताते हुए इसका स्वागत किया है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कार्यालय से IRIB के संवाददाता अली रजबी, हमारे साथी अख्तर अब्बास की आवाज में।
यमन की स्थिति पर समीक्षा को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में ईरान और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते का स्वागत किया गया। इस बैठक में यमन के मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के विशेष दूत हैंस ग्रनबर्ग ने अपनी हालिया तेहरान यात्रा के बारे में बताते हुए इस्लामी गणतंत्र ईरान के अधिकारियों के साथ हुई मुलाकात को सकारात्मक बताया। हैंस ग्रनबर्ग ने कहा कि मैं राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए ईरान और सऊदी अरब के बीच हालिया समझौते का स्वागत करता हूं और इसे यमन संकट के लिए भी सकारात्मक कदम के रूप में देखता हूं। उन्होंने कहा कि एक अच्छे पड़ोसी के तौर पर दोनों देशों के बीच हुई वार्ता और राजनयिक संबंध के फिर से स्थापित होने का समझौता पूरे क्षेत्र खासकर यमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हैंस ग्रनबर्ग ने कहा कि हम सभी पक्षों से मांग करते हैं कि शांति स्थापित करने के लिए क्षेत्र में जो हमें अवसर मिला है उससे हमें अच्छी तरह से लाभ उठाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के उप स्थायी प्रतिनिधि गैंग शुआंग ने भी अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए यमनी लोगों की सख्त जरूरत की ओर इशारा किया और बातचीत के जरिए तनाव को कम करने की कोशिश को जरूरी बताया। गैंग शुआंग ने कहा कि हमें उम्मीद है कि क्षेत्र के 2 प्रभावशाली देशों के रूप में ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों की बहाली की उत्साहजनक खबर यमनी लोगों की स्थिति में सुधार के लिए अनुकूल परिस्थितियों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।
सपोर्ट ऑफ डोनर
मानवीय मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की उप महासचिव जॉयस मासोया ने भी यमन भेजी जाने वाली मानवता प्रेमी सहायता और वित्तीय संसाधनों की कमी के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की।
यमन रिमेन्स ए स्टगरिंग इमरजेंसी।
जॉयस मासोया कहती हैं कि यमन में अभी भी आपातकाल की एक चौंका देने वाली गंभीर स्थिति है। इस समय इस देश में 1,70,00,000 लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सहायता की तत्काल आवश्यकता है।
What they need to help.
उन्होंने कहा कि यमन की जनता को इस समय मानवता प्रेमी सहायता की जरूरत है। वो लगभग 0.43 अरब डॉलर बजट की आवश्यकता है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कार्यालय से अली रजबी की रिपोर्ट।
और अब रुक करते हैं भारत का। भारत प्रशासित कश्मीर में एक बार फिर मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई की मांग तेज हो गई है। रमजान के पवित्र महीने से पहले उनको रिहा किए जाने की कई संगठनों ने मांग की है। इस बीच कश्मीर में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ जोड़ो यात्रा निकाली है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
धार्मिक गुटों के गठबंधन मुतहदा मजलिस उलमा ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर एलजी से आह्वान किया है कि रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए मीरवाइज उमर फारूक जो मुतहदा मजलिस उलमा के अध्यक्ष की रिहाई अमल में लाई जाए। आज एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि हमने बार बार प्रशासन को यह समझाने का प्रयास किया कि मीरवाइज मौली मोहम्मद उमर फारूक एक धार्मिक नेता है और उस पर धार्मिक जिम्मेदारियां हैं, परंतु पिछले 3.5 वर्षों से वो अपने निवास में नजरबंद है। उन्होंने कहा कि इससे पहले एलजी प्रशासन ने यह दावा किया था कि उन्हें रिहा कर दिया गया, परंतु वो झूठ का पलंदा ही साबित हुआ। मुतहदा मजलिस उलमा ने एक बार फिर लोगों से कहा है कि वो रमजान के पवित्र महीने में धार्मिक सभाओं का आयोजन करें और अल्लाह की बारगाह में सर्वसुज हो जाए। मुतहदा मजलिस उलमा ने कहा है कि उन्होंने कुरानी महफिलों की भी घोषणा की है और जो भी ऐतिहासिक जामे मस्जिद के अलावा केंद्रीय जामे मस्जिद है वहाँ पर कुरान खानी इस पवित्र महीने में एकजुट और एकता के साथ अदा की जाएगी। इस बीच जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मतभेद जो पैदा कर दिए गए थे, अगरचे भारत जोड़ो यात्रा ने उसे काफी हद तक खत्म कर दिया है, परंतु अब उन्होंने हाथ जोड़ो अभियान आरम्भ कर दिया है।
हम तुम्हारे साथ हैं। वादा पूरा करो।
दुश्मनी छोड़ो। बीजेपी छोड़ो। बीजेपी छोड़ो। यशवंत छोड़ो। हमारी छोड़ो।
हाथ जोड़ो यात्रा के हवाले से विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की है। आज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष ने और विकार रसूल ने इस हवाले से उत्तरी कश्मीर में पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि मौजूदा प्रशासन ने जो देश में नफरतें फैलाई हैं उनको मिटाने के लिए उन्होंने भारत जोड़ो के बाद अब हाथ जोड़ो यात्रा आरम्भ कर दी है। उन्होंने इस अवसर पर कहा,
हर जगह हमारा कैलेंडर बना है। आज मारकुंड से लेके सुमल तक ये 5-6 किलोमीटर का जो था, आज हमारा हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान फॉलो अप प्रोग्राम है भारत जोड़ो यात्रा का, वो हम करने जा रहे हैं। और इसमें मुद्दे जो हैं वो पब्लिक के रिलेटेड हैं। पहले 3 मुद्दे आपको पता ही है कि जो राहुल गांधी जी के 3 मुद्दे थे, पूरी देश में नफरत की आग लगी है। बीजेपी और RSS वालों ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने एक लोगों में एक आग लगा दी है हिंदू और मुसलमान की। उसको खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी निकले थे, प्यार बांटने के लिए लोगों में निकले थे, और जिस तरीके से कश्मीरी लोगों का प्यार उससे मिला उससे बहुत खुश हुए वो। इसी तरीके से यहाँ पे जो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान में तो बहुत है लेकिन जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पे, उस बेरोजगारी के लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हमने उसका भी मुद्दा रखा है।
यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया जिसमें महिलाएं और बालक भी शामिल थे। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का ये दैनिक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, राजनीतिक चर्चा के बाद पेश है आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार।
पत्र संसार।
दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपने भैया रविश और दीदी मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मन पसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे।
जी दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि आप जिस तरह हमारा साथ देते हैं, हमारे कार्यक्रम में शामिल होते हैं, हमको मेल करते हैं, हमें बहुत सारे मैसेज करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। हमारी साइट पर ज़रूर विज़िट किया कीजिए, जिसके लिए हम आपका इंतज़ार करते हैं। हमारी साइट का एड्रेस है parstoday.ir/hi। तो ये दीदी ने बिल्कुल अच्छी तरह से आपको बता दिया है, parstoday.ir/hi। ये एड्रेस हमेशा याद रखिए, साइट पर जरूर विजिट कीजिए। खबरों के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें ऐसी आपको जानकारी भरी मिलेंगी, कुरान के बारे में और भी बहुत सारी राजनीतिक बातें, बहुत सारी चीजें हमारी साइट पर हैं जिस पर आप जाकर अच्छी अच्छी चीजें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
चलते हैं ईमेल की तरफ और देखते हैं किन श्रोताओं ने हमें ईमेल भेजा है। तो यह है छत्तीसगढ़ से फरीदा बेगम लिखती हैं, रेडियो तेरान की हिंदी सेवा के रविश जी और मरियम मेहर दादी जी को नमन सलाम और नमस्कार। आने वाले ईरानी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आजकल आपके प्रसारण हम नियमित पूर्वक सुन रहे हैं और शुक्रवार को विश्व समाचार और राजनीतिक चर्चा के साथ साथ पत्र संसार और विज्ञान की डगर का कार्यक्रम काफ़ी रोचक लगा और साथ ही साथ विज्ञान की डगर के तहत विज्ञान के क्षेत्र में ईरान में हो रही तरक्की के बारे में चर्चा की गई, जो मुझे काफ़ी ज्ञानवर्धक लगी और इसके लिए आप सभी को कोटि सा धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप इतने ज़्यादा ध्यानपूर्वक तरीके से हमारी खबरों को सुनती हैं, हमारी रेडियो पर की आप नियमित जो है वो श्रोता हैं
है,
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह अपने इस प्रेम और स्नेह भरे संदेश को हम तक पहुँचाते रहिए, हम आपका भी कोटि कोटि नमन करते हैं।
रजनीश ठाकर लिखते हैं, हमें रेडियो तेरान हिंदी सेवा से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें दिनांक 3 मार्च 2023 दिन शुक्रवार का कार्यक्रम पत्र संसार बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में आपने मेरे पत्र को शामिल किया, जिसे सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। इसी दिन का विज्ञान की डगर कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम की सफलतम प्रस्तुति के लिए दीदी मरियम मेहर दादी जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, दीदी की ही तरफ से हम आपका धन्यवाद कर देते हैं, इसलिए कि आपने दीदी को ही खाली धन्यवाद किया है। तो
वैसे पहले जो श्रोता थे उन्होंने आपका भी नाम लिया
तो
है,
मैंने इनको जो है इन्होंने नाम नहीं लिया, तो इसलिए इनका जो है दीदी की तरफ से, दीदी मरियम महदादी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ये मजाक था, इसको आप सीरियस ना लीजिएगा। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्रोताओं, आप अभी इस वक्त सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार और अब चलते हैं दीदी मरियम मेहर दादी के पास और देखते हैं कि वो आज अपने सांस्कृतिक पिटारे में क्या लेकर आई हैं। जी दीदी
जी, वैसे भैया हमने पिछली बार जो श्रोताओं को चार शाम्बे सूरी के बारे में सुनवाया था और अभी जो ईरान की ईद नौरोज नज़दीक आ रही है तो उसी सिलसिले में हम लोग कुछ खबर हमने दे दी थी। एक था उसमें चार शाम्बे सूरी और आज हैं हम गशुकज़नी यानी चम्मच से बर्तन में आवाज़ निकालना।
बिल्कुल बिल्कुल, आप ये तो वैसे महिलाओं का ज़्यादा काम है, इसमें पुरुषों का कोई लेना देना नहीं है
जी।
अक्सर चम्मच से क्या वो हर जगह से आवाज़ निकाल देती है
जी। तो अभी वो क्या कहते हैं वो चपाती जो बनाते हैं उससे आवाज़ नहीं निकालती हैं वो, सही है। ईरान में कुछ प्रांतों की ये पुरानी प्रथा है जो ईद नौरोज से पहले मनाया जाता है। इसमें युवा लोग अपने साथ एक चम्मच और एक तांबे का कटोरा लेकर रात में सड़कों पर निकल जाते हैं। कुछ घरों के सामने जाकर कटोरी पर चम्मच से आवाज़ निकालते हैं। घर का मालिक कटोरी में कुछ चॉकलेट, मिठाई, मेवे या कुछ पैसे लाता है। वे आमतौर पर उपहार लेने के लिए 7 घरों में जाते हैं। कई बार लोग कुछ अजीबोगरीब रीति रिवाज के अनुसार कपड़े पहनते हैं। ये एक ट्रिक या ट्रीट की तरह होता है। आमतौर पर गशोक خوشگزنی میں لڑکیاں اور لڑکے خود کو چادر سے ڈھک لیتے ہیں تاکہ انہیں پہچانا نہ جا سکے۔ یووا لڑکیاں جو جلد شادی کرنا پسند کرتی ہیں، سال کے آخری منگلوار کی رات کو گلیوں میں جا کر چھپ کر باتیں سنتی ہیں۔ یدی وہ اچھی باتیں سنتے ہیں تو مانا جاتا ہے کہ ان کی منوکامنا پوری ہوتی ہے، یدی وہ دکھد باتیں سنتے ہیں تو ان کی منوکامنا پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ان کی ایک سوچ ہے۔ ایسے ہی ایک اور تیوہار یا پرتا ہے کوزے شکیانی، مٹی کے برتنوں کو توڑنا۔ نوروز سے پہلے منایا جاتا ہے اسے بھی، اور لوگ آ کے کچھ راکھ کو درباگے کے پرتیک کے روپ میں، کچھ نمک کو بری نظر کے پرتیک کے روپ میں، اور ایک سکے کو مٹی کے برتنوں کے گھڑے میں دریدرتا کے پرتیک کے روپ میں ڈالتے ہیں۔ پھر پریوار کا ہر سدسیہ گھڑے کو اپنے سر کے چاروں اور گھماتا ہے، اور آخری والا اسے چھت پر لے جاتا ہے اور گلی میں پھینک دیتا ہے، جیسے کہ سبھی درباگے، بری نظر اور دریدرتا اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔
بہت ہی اچھی چیزیں دیدی آپ نے بتائی۔ مجھے ایک چیز اس میں یاد آ گئی،
مجھے سمجھ میں آ گئی،
کورونا کال کے سمے میں بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی جی نے بھی اسی طرح چمچ سے اور چیزوں کو بجانے کے لیے کہا تھا۔ بہرحال اس میں ایک چیز ضرور ایڈ کرتے چلیں کہ جو ہمارے شروتا کے لیے بہت زیادہ مہتوپورن ہے، یہ تمام جو چیزیں ہیں، رسمیں ہیں، جو پرتھائیں ہیں، یہ اسلامی کال سے پہلے کی ہیں، ان کا اسلامی مانیتاؤں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جی شروتاؤں، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں اور ہمارے ساتھ آپ بنے ہوئے ہیں کارکرم پتر سنسار میں، تو بنا وقت گوائے چلتے ہیں دیدی مریم مہردادی کے پاس۔
جی، اور کمنٹس شامل کرتے ہیں۔
جی،
کیوں چرچا میں ہے ایران میں چھاتروں کو زہر دینے کا سندگدھ معاملہ؟ اس پر زینب اختر لکھتی ہیں، تو ایران اپنی ہی لڑکیوں کو زہر دے رہا ہے؟ کیسے مورخ ہیں لوگ، کیسے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے؟ تو پھر نائجیریا کا کیا اپنی ہی اسکولی چھاتراؤں کا اپہرن کر رہے ہیں وہ لوگ بھی؟ ایران کو ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے، ایران کے دشمن راکشس اور امانویہ ہیں جو نردوش ایرانیوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ کرور دشمن سڑے ہوئے دماغ اور ناجی ٹھگ ہیں۔ ایرانیوں اور ایران کو نقصان پہنچانا ان کا گھنونا مقصد ہے۔ ایم کے او، یو ایس، یو کے، اسرائیل، ایران میں ہو رہے سبھی آتنکواد کے پیچھے ہیں۔
جی دیدی، بالکل صحیح کہا، اور زینب اختر جی نے جس طرح اپنی بات لکھی ہے وہ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے لکھا ہے۔ اس میں ایک بات ایڈ کرتے چلیں، دیکھیے اس طرح کی گھٹنائیں، اس طرح کی جو واقعے جو ہوتے ہیں وہ عام طور سے ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے بھارت میں بھی، میں نے ایک مرتبہ ابھی ایک میں نے خود لیکھ لکھا تھا، اس میں لکھا تھا بھارت میں آئے دن مڈ ڈے میل کے اس میں معاملے میں شکایت آتی رہتی ہے، بچے بیمار پڑتے رہتے ہیں۔ یہاں بھی ایک، لیکن بھارت میں اور ایران میں انتر یہ ہے کہ ایران کو یہ تمام جو اہنکاری شکتیاں ہیں، جو سامراجوادی طاقتیں ہیں، یہ پوری طرح ایران کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں، اور کسی بھی استھتی میں نہیں چاہتے ہیں کہ ایران میں ایک شانتی استھاپت ہو۔ اور ایران، ان کے اتنے کڑے پرتیبندھوں کے بعد، اتنی تمام میڈیا وار کے بعد بھی ایران لگاتار پرگتی کرتا جا رہا ہے، وکاس کرتا جا رہا ہے۔
تو اسپیشلی لڑکیوں کو تو وہ بہت ہی
بہت زیادہ، آپ تو یہاں پر ہیں، دیکھتی ہیں کہ ہر طرح سے، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر وبھاگ میں، چاہے بڑے سے بڑا وبھاگ ہو، جہاں بھی ہو وہاں مہیلاؤں کی اپستھتی ہے۔ تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس سے دشمن جو ہے اس کو پھوٹی آنکھ جو ہے وہ نہیں بھاتا ہے، اس طرح کی خبروں کو وہ اڑاتا رہتا ہے۔ جی شروتاؤں، آپ سن رہے ہیں کارکرم پتر سنسار، اور میں ہوں آپ کا بھیا رویش زیدی، اور ہمارے ساتھ میں ہے آپ کی دیدی یعنی مریم مہردادی۔ تو چلتے ہیں دیدی کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ آگے کے پروگرام میں کیا شامل کر رہی ہیں وہ۔
جی، ایک شروتا کے وچار ہم سنواتے ہیں۔ تو چلتے ہیں کیسنگا اوڈیشا سے سریش اگروال کے وچار سنتے ہیں۔
نمسکار مریم دیدی اور عباس بھیا، میں کیسنگا اوڈیشا سے سریش اگروال۔ ہر بار کی طرح میں نے پتر سنسار بھی دھیان پوروک سنا، जिसमें श्रोता मित्रों की राय के अलावा सांस्कृतिक खबर में पश्चिमी अजरबैजान क्षेत्र में तक्काक शहर में हाथ से बुने गए कालीनों पर दी गई जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगी और इस कार्यक्रम के तहत इस तरह की जानकारी आगे भी देते रहिएगा, ये कार्यक्रम बहुत ही दिलचस्प है, शुक्रिया।
तो दीदी, ये तो अग्रवाल जी ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की हैं और बहुत ही पुराने अपने श्रोता हैं ये रेडियो हिंदी के, तो अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपने संदेश अपने विचार हम तक पहुंचाते रहा कीजिए। और दीदी, अब चलते हैं आपके पास, हमारे पास थोड़ा सा समय बचा है तो उसमें भी एक कमेंट आप शामिल कर लीजिए।
जी, ईरान और IAEA में किन बातों पर सहमति बनी है, इस पर आरिश लिखते हैं, ईरानी प्रशासन को सर्वोच्च नेता अली खामेनी की सलाह का पालन करना चाहिए जो लगातार पश्चिम पर भरोसा न करने की बात कह रहे थे। उनकी बेजोड़ बौद्धिकता ने ईरान को उपहार दिया और ईरान को सम्मान और सम्मान के शीर्ष पर पहुंचा दिया। ईरान में कोई भी उनकी सबसे शक्तिशाली सलाह को नजरअंदाज करने के लिए ईरान को खतरनाक विनाशकारी परिणामों की ओर ले जा सकता है, इसलिए ईरान को अब नारा शुरू करना चाहिए जैसे पहले परमाणु बाद में बात। केवल यही नारा ईरान को विश्व के गौरव के शीर्ष पर खड़ा करेगा।
आपके हम जो जज्बात है उसको हम समझ सकते हैं, लेकिन ये तमाम जो फैसले लिए जाते हैं और ये तमाम जो नीतियां बनती हैं वो ऊपर है, खुद इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता हैं, उसके बाद यहाँ की जो सरकार है वो किस तरह का निर्णय लेती है, क्या निर्णय लेती है, वो उनके ऊपर है। जी
जी, और एक कमेंट शामिल करते हैं, बहुत मुझे अच्छा लगा ये, रूस बना भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता, तो इस पर निक लिखते हैं, जानते हैं कि भारत रूस से तेल लेकर भीख मांगने वाले पश्चिम को बेच रहे हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और ये बहुत बड़ा तेल जो है वो बहुत बड़ा दीदी खेल है, इस वक्त पूरे विश्व में जो है वो तेल के ही खेल चल रहा है। और आज जो इतने बड़े बड़े डाकू अमेरिका की शक्ल में रूप में आप देख रही हैं या पश्चिमी देशों के रूप में ये इतने बड़े बड़े चोर और डाकू बैठे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य है कि इस जो क्षेत्र है इस क्षेत्र से तेल को की चोरी करें और जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी चोरी करें, उनको अपने अपने देशों तक ले जाएं चोरी करके, पूरा खेल यही है। और इस खेल में कोई चीज़ नहीं दीदी, एक चीज़ और अपने श्रोताओं को हम बताते चलें कि हमारी साइट का एड्रेस है pasttoday.ir/hi और हमारा व्हाट्सएप नंबर दीदी बताएंगी जल्दी से।
जी, व्हाट्सएप नंबर है 0098903506542 और हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir।
तो हमें मैसेज कीजिए, हमारे व्हाट्सएप पे अपना संदेश भेजिए और हमारी साइट पर विजिट कीजिए। इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अपने भैया रविश जैदी को और दीदी मरियम मेहरदादी को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम आपने सुना पत्र संसार, और अब पेश है सभा का अंतिम कार्यक्रम विज्ञान की डगर।
विज्ञान की डगर।
दोस्तों, विज्ञान की डगर नामक कार्यक्रम की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ईरान और दुनिया में होने वाली प्रगति पर चर्चा करेंगे। स्वाति और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
...2018 पामा विश्व प्रतियोगिता का 18वां संस्करण अबेकस के साथ मानसिक गणना मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें दुनिया के 24 देशों के 733 बच्चों ने भाग लिया था, जबकि इस प्रतियोगिता में ईरानी बच्चे चैंपियन का खिताब जीतने में कामयाब रहे। ईरान की 35 सदस्यीय टीम में अलबुर्ज प्रांत के 9 जीनियस और मेधावी, लूरिस्तान प्रांत के 2 जीनियस और मेधावी, बुशहर प्रांत के 2 जीनियस और तेहरान प्रांत के 2 जीनियस और मेधावी, जंजान प्रांत के 2 मेधावी, केंद्रीय प्रांत के 4 मेधावी, कुर्दिस्तान प्रांत के 1 जीनियस, 10 मेधावी किरमान शाह प्रांत से, हरमुजगान प्रांत से 2 प्रतिभागी और हमदान प्रांत से 1 मेधावी ने शिरकत की।
इस विश्व प्रतियोगिता में, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी मानसिक कंप्यूटरिंग घटना माना जाता है, ताइवान, मलेशिया, थाईलैंड, कनाडा, हांगकांग, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, लेबनान, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, भारत के प्रतिनिधि, रूस, चीन, कजाकिस्तान, संयुक्त अरब इमारत, उज्बेकिस्तान, मिस्र, ताजिकिस्तान, यमन और ईरान मौजूद थे। अबेकस एक पुराना उपकरण है जिसका उपयोग ईसा पूर्व सैकड़ों साल पहले से गणना के लिए किया जाता रहा है। अबेकस का उपयोग 4 बुनियादी गणितीय कार्यों, जोड़, घटाव, गुणा और भाग को करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग संख्याओं की दूसरी और तीसरी जड़ों की गणना के लिए भी किया जा सकता है। ईरान ने 2019 में दक्षिण अफ्रीका में विश्व चैंपियनशिप जीती थी।
सामग्री और ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल स्क्रू को डिजाइन और निर्मित करने में सफलता प्राप्त की, जिसका उपयोग घुटने की चोटों में पूर्ववर्ती क्रूसिएट लिगामेंट को स्थिर करने के लिए किया जाता है। घुटनों की चोट में सर्वाधिक चोटिल होने वाला लिगामेंट है इंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट ACL 1 लिगामेंट। 2 हड्डियों की संरचना को जोड़ने वाली इकाई है जो हड्डियों की चाल मूवमेंट को आसान बनाती है। ज्यादातर खेल में या किसी गंभीर चोट के कारण इस लिगामेंट को क्षति पहुंच सकती है। ACL लिगामेंट की चोट खिलाड़ियों में बहुत आम है। खेल के दौरान किसी गलत ढंग से मुड़ना या इस तरह की हरकत से ये समस्या हो सकती है।
समय पर इलाज नहीं हो तो खेलना तो दूर, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है और घुटने में सूजन व लचक आ जाती है। इसके इलाज के लिए अब मामूली चीरे वाली अत्याधुनिक तकनीक डबल बंडल ACL रिकंस्ट्रक्शन आ गई है। ACL लिगामेंट की चोट ऑर्थोपेडिक्स और घुटने की चोटों में सबसे आम चोटों में से एक है जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो अपूर्णीय चोटें होती हैं और यहां तक कि कुछ मामलों में मृत्यु भी हो जाती है। अमेरिका में 2017 में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इस देश में हर साल लगभग 2,00,000 क्रूसिएट लिगामेंट रिपेयर सर्जरी की जाती है जिस पर लगभग $6.7 बिलियन का खर्च आता है।
घुटने के जोड़ में लिगामेंट्स एवं मेनिस्कस के कार्य के बारे में संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। जब हम खड़े होते हैं, चलते हैं या दौड़ते हैं तो लिगामेंट्स घुटने के जोड़ को स्थिर करते हैं। चलने और दौड़ने के दौरान घुटने के जोड़ में मेनिस्कस शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करता है।
लिगामेंट्स या मेनिस्क को चोट कैसे लगती है? घुटने के लिगामेंट्स या मेनिस्क की चोट सामान्य खेल में लगने वाली चोटें होती हैं, हालांकि वे सड़क यातायात दुर्घटनाओं के दौरान भी हो सकती हैं। खेल के दौरान मुड़े हुए या सीधे घुटने पर भारी जोर देना एक सामान्य घटना है और जिससे घुटने का लिगमेंट चोटिल हो सकता है। एक पैर पर कूदना या एक कदम से घुटने को विपरीत दिशा में मोड़ना, जैसे कि फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलों में होता है, चोट लगने का एक सामान्य कारण है।
लिगामेंट की चोट एक छोटे से स्प्रेन या मोच से पूर्णतः टूट जाने तक कंप्लीट टियर यानी हो सकती है। एक टियर आंशिक केवल कुछ तंतुओं का फटना या पूरा हो सकता है। अधिक बल से चोट लगने पर मेनिस्क भी फट सकती है। घुटनों की अधिकांश चोटें केवल मोच होती है और प्रॉपर ट्रीटमेंट से बिना सर्जरी के खिलाड़ी पुनः खेलों में लौट जाते हैं।
घुटने के जोड़ों की चोट के निशानियां और लक्षण क्या है? स्प्रेन के मामले में जिस लिगमेंट में स्प्रेन है, उसे छूने में दर्द महसूस होगा। यदि चोट लगने पर एक लिगमेंट पूरी तरह से फट जाता है तो उसके टूटने की आवाज को सुना जा सकता है। घुटने में कोई भी गतिविधि करने से दर्द होता है और स्थिर खड़े होने में दिक्कत आ सकती है। घुटने में अत्यधिक खून बहने के कारण घुटने में पूरी तरह से सूजन हो जाती है। यदि अधिक रक्त बहने के कारण चोटिल घुटना बहुत सूज गया है तो डॉक्टर सिरिंज की मदद से घुटने से खून निकाल सकता है।
घुटने की लिगमेंट चोट का निदान कैसे किया जाता है? स्पोर्ट्स चोट विशेषज्ञ द्वारा घायल घुटने की क्लिनिकल परीक्षा अक्सर निदान का सुझाव देने के लिए पर्याप्त होती है। लिगमेंट के फटने या मैंसिकल या कॉर्लिटेज चोट का प्रबल अंदेशा है तो वो आपको MRI टेस्ट करने के सुझाव दे सकता है। याद रहे, इस टेस्ट को करने का सबसे सही समय चोट के तुरंत बाद है।
नैनो टेक्नोलॉजी और एडवांस मटेरियल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता के अनुसार हाल के वर्षों में क्रूसिएट लिगामेंट को स्थिर करने के लिए मेटल इंटरफेरेंस स्क्रू का इस्तेमाल किया गया है, जो अपनी उच्च शक्ति के बावजूद लिगामेंट की संभावना सहित कई नुकसान हैं। उत्तक में मरम्मत के बाद प्रत्यारोपण को हटाने के लिए माध्यमिक सर्जरी की आवश्यकता शामिल है।
बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर स्क्रू के उपयोग ने धातु के शिकंजे के कारण होने वाली समस्याओं को भी काफी हद तक हल कर दिया है। हालांकि धातुओं की तुलना में कमजोर यांत्रिक गुणों के अलावा यह हड्डी के पुनर्विकास को प्रोत्साहित नहीं करता और इसके परिणाम स्वरूप इसके विनाश के बाद एक गुहा का गठन किया गया था। इस परियोजना के प्रबंधक के अनुसार बायोडिग्रेडेबल होने के अलावा इसकी संरचना में उपयोग किए गए घटकों के कारण इस स्क्रू में क्रूसिएट लिगामेंट को बनाए रखने के लिए यांत्रिक शक्ति और हड्डी से चिपके रहने की संभावना और हड्डी को बदलने की क्षमता है।
शहीद महेश्ती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने गेहूं के कचरे से सेल्यूलोज नैनो फाइबर निकालकर एक नैनो सुपर अवशोषक को जोड़ा है, जो सामान्य सुपर अवशोषक की तुलना में पर्यावरण के साथ अधिक संगत है और इसमें पानी को अवशोषित करने की समान क्षमता है। सुपर एब्जोर्बेट्स, जिनका हाल के वर्षों में व्यवसायीकरण किया गया है और विभिन्न उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है, 3D संरचनाएं हैं जो पानी और जलीय घोल को अपने वजन के कई 100 गुना तक स्टोर कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें छोड़ सकते हैं।
सुपर एब्जोर्बेट्स के, जिनका हालिया वर्षों में व्यवसायीकरण किया गया है और विभिन्न उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है, कई फायदे के बावजूद कई पर्यावरणीय और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देते हैं। इन शोधकर्ताओं ने सुपर अवशोषक के संश्लेषण में प्राकृतिक नैनो मटेरियल्स का उपयोग करके उनकी जैव संगतता को बढ़ाते हुए उनकी दक्षता में सुधार करने का प्रयास किया।
इस विश्वविद्यालय के संकाय के एक सदस्य के अनुसार बाजार में उपलब्ध सुपर एब्जोर्बेट्स के उत्पादन के लिए कच्चे माल कभी कभी हानिकारक कार्बनिक पदार्थ होते हैं और बाजार में उपलब्ध सुपर एब्जोर्बेट्स की स्वास्थ्य समस्याओं के बीच ये उल्लेख किया जा सकता है कि वे शिशुओं के प्रति संवेदनशीलता का कारण बनते हैं। इस योजना में सुपर एब्जोर्बेट्स के उपयोग की स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने के अलावा उनके उत्पादन की लागत को भी बाजार में उपलब्ध सुपर एब्जोर्बेट्स के लगभग एक तिहाई तक कम कर दिया गया है।
एक डेनिश कंपनी ने नई तकनीकों का उपयोग करते हुए दावा किया है कि उसके उत्पादों को लंबे समय तक पहना जा सकता है और उनके माध्यम से शरीर के संवेदनशील हिस्सों में कीटाणुओं को स्थानांतरित करने की थोड़ी सी भी चिंता नहीं होती। कुछ कपड़े जो हमेशा बंद वातावरण में उपयोग किए जाते हैं रोगजनक बैक्टीरिया की गतिविधि के लिए अति संवेदनशील होते हैं और ये बैक्टीरिया भी खराब गंध का कारण बनते हैं, लेकिन इस कंपनी द्वारा उत्पादित कपड़े विशेष जीवाणुरोधी पदार्थों से लैस हैं जो सभी बैक्टीरिया और अन्य खतरनाक सूक्ष्म जीवों को मारते हैं।
इन कपड़ों को बिना धोए कई हफ्तों तक पहना जा सकता है। इन उत्पादों के उत्पादन में सिल्वर क्लोराइड का भी उपयोग किया गया है जो दुर्गंध को फैलने से रोकता है। इस कंपनी का दावा है कि इन कपड़ों के उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री का सेट सभी प्रकार के जीवाणुओं के 99.9% के विकास को रोकता है। बेशक सभी विशेषज्ञ इन कपड़ों के दीर्घकालिक उपयोग से सहमत नहीं हैं, भले ही सबसे उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया हो, और उनका मानना है कि 3 दिनों के बाद इन कपड़ों को बदलना बेहतर है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने कार्यक्रम सुना विज्ञान की डगर, जिसे पेश किया अहमद अब्बास, क्षमा कीजिएगा, अहमद अब्बास और स्वाति ने। कार्यक्रम कैसा था इस बारे में आप अपने विचार हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsiribir। हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं parstoday.ir/hi। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098-9035065492। तो दोस्तों, इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा अब यहीं पर संपन्न होने जा रही है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज। Thank you.